हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। काली पहाड़ी से निकलने से पहले अमित ने सर्प महाराज की पत्नी सर्पिणी के सपने के बारे में पूछना नहीं भूला था। ये बात सर्प महाराज को अत्यंत बुरी लगी थी और अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो काली शक्तियों के गुरु के सामने जा खड़ा हुआ और दोनों हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, आखिर कब तक हमें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी? आखिर कब आप हमें इस श्राप से आज़ाद करेंगे? कितना समय लगेगा? क्योंकि अब यहाँ रहा नहीं जाता। हमें अपने घर परिवार की बहुत याद आती है। हालांकि हम जानते हैं आपने हमारी पूरी प्रजाति को यहाँ रहने की इजाज़त दी है, लेकिन हम अपने महल जाना चाहते हैं, सर्प महाराज ने विनती की। सर्प महाराज की विनती सुनकर काली शक्तियों का गुरु जोर जोर से हंसने लगा। वो बोला, हम जानते हैं तुम्हें यहाँ एक पल के लिए भी रहना पसंद नहीं है, लेकिन हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो सर्प महाराज। अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो तुम्हारी सर्पिणी के साथ साथ तुम्हारी पूरी प्रजाति का विनाश हो जाएगा और वो एक एक करके मरने लगेंगे। हमारा श्राप कभी खाली नहीं जाता, समझे तुम? और रही बात तुम्हारे यहाँ से जाने की, हाँ, हम मानते हैं तुमने इतने सालों में हमारी काफी सेवा की है और हम उससे प्रभावित भी हैं, लेकिन अभी हमारा एक महत्वपूर्ण काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उसके बाद हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देंगे। ये बात सुनकर सर्प महाराज बोला, आप मुझे बता दीजिए, ऐसा कौन सा काम है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं, ताकि आपका वो काम करने के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँ। सर्प महाराज की बात सुनने के बाद काली शक्तियों के गुरु का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वो बोले, अगर तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है तो तुम ये बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि हमारे सामने बोलने की हमने किसी को इजाज़त नहीं दी है, और जब तक हम नहीं चाहेंगे तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जाओ और सब काम देखो। सर्प महाराज को काली शक्तियों के गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने काली शक्तियों के गुरु के सामने गुस्सा दिखाया तो वो उसकी जान लेने में एक पल भी नहीं लगाएगा। सर्प महाराज को अपनी जान जाने का बिल्कुल भी डर नहीं था। वो सिर्फ अपनी प्रजा और अपनी प्रेमिका की परवाह करता था। वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। तभी सर्प महाराज ने फिर से विनती करते हुए कहा, गुरुजी, मेरा आपसे निवेदन है कि आपका जो भी काम है वो आप मुझे बता दीजिए, ताकि आपका वो काम करने के बाद हम हमेशा हमेशा के लिए आपके श्राप से मुक्त हो जाएं, क्योंकि मुझे अब अपना परिवार आरंभ करना है। सर्प महाराज की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, ठीक है सर्प महाराज जी, वैसे भी मैं आपकी सेवा से काफी प्रभावित हूँ। कुछ ही दिनों में हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर देंगे। ऐसा कहकर वो वापस अपनी तपस्या में लीन हो गए। सर्प महाराज कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले गए। लेकिन आज फिर उनका दिल काली शक्तियों के गुरु के लिए नफ़रत से भर गया था, क्योंकि सर्प महाराज ने मन ही मन ठान लिया था कि एक बार वो इस श्राप से मुक्त हो जाए, उसके बाद वो काली शक्तियों के मालिक अमित की जान हर हाल में लेगा, क्योंकि अमित ने उसकी महारानी यानी उसकी प्रेमिका पर गलत नज़र डाली थी। वहीं करिश्मा और अमन दोनों साथ में गार्डन में आ गए थे। करिश्मा ने तारा के पास जाकर बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसके हाथों में एक छोटा सा बॉक्स थमा दिया और कहा, ये तुम्हारा खाना बनाने की रस्म का गिफ्ट है जो हमने बहुत पहले बनवा लिया था, लेकिन उस वक्त जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव चल रहे थे कि हम तुम्हें ये कभी दे ही नहीं पाए थे। अमन ने तारा के कान में हल्का सा झुक कर कहा, मेरा गिफ्ट भी तैयार है, लेकिन मैं तुम्हें अपना गिफ्ट यहाँ सबके सामने नहीं दूंगा, वो मैं तुम्हें अंदर कमरे में दूंगा। अमन की बात सुनकर तारा के कान लाल हो गए। वो मुश्किल से हल्का सा मुस्कुराई और करिश्मा का दिया हुआ गिफ्ट बॉक्स खोलकर देखने लगी। बॉक्स में एक बहुत ही खूबसूरत अंगूठी थी जिसके ऊपर एक बड़ा सा नग लगा हुआ था और उस अंगूठी से रंग बिरंगी रोशनियाँ निकल रही थी। उस अंगूठी को देखकर तारा हैरानी से करिश्मा की ओर देखने लगी। तब करिश्मा ने कहा, बेटा, ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये एक जादुई अंगूठी है जो तुम्हारी रक्षा करेगी। तारा ने खुशी खुशी वो अंगूठी ले ली और पहन ली। अंगूठी पहनते ही उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी शक्तियों में और ज्यादा इजाफा हो गया हो। वो अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करने लगी और उसने खुशी से करिश्मा को गले लगा लिया। फिर करिश्मा अमन की ओर देखने लगी। वो बोली, तुम भी अब बहू का गिफ्ट निकालो। तब अमन ने करिश्मा से कहा, मॉम, मेरा गिफ्ट मुझे नहीं मिल रहा है, शायद कहीं रखा है। मैं उसे कमरे में लेकर जाता हूँ, वहीं ढूंढ कर दूंगा। अमन की बात सुनकर करिश्मा मुस्कुराने लगी। वो समझ गई थी कि अमन तारा को कमरे में ले जाने का बहाना बना रहा था। करिश्मा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तुम जाओ और तारा को कमरे में ले जाओ। वैसे भी वो काफी थक गई होगी, उसे आराम की जरूरत है। ऐसा कहकर करिश्मा मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। तब तारा अमन से गुस्सा होते हुए बोली, जरूरी था मॉम के सामने आपको इस तरह की बातें करना, कमरे का नाम लेना। पता नहीं मॉम अब हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। तब अमन शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या सोचेंगी? ये सोचेंगी ना कि उनका बेटा उनकी बहू से कितनी मोहब्बत करता है कि उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता है। तब तारा ने अमन से कहा, ये सब बातें करने से काम नहीं चलेगा, मुझे गिफ्ट चाहिए। तब वो मुस्कुराने लगा और बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा गिफ्ट कमरे में है, चलो मेरे साथ। तब वो तारा को कमरे में ले गया। वहीं दूसरी ओर विक्रांत ने अमन की कंपनी जाकर उसकी बाहरी प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स निकाल लिए थे। विक्रांत रंधावा एक धुएं के रूप में अमन के केबिन में प्रवेश किया था। उसे अच्छी तरह पता था कि अमन के महत्वपूर्ण फाइल्स कहाँ रखे रहते हैं, जिन्हें अमन को देखने का कभी समय ही नहीं मिलता था, क्योंकि अमन के पास अनगिनत प्रॉपर्टीज थीं। इसलिए विक्रांत रंधावा ने अमन की प्रॉपर्टीज की डिटेल्स निकालने के बाद उनमें से करीब 50 से 60 जगहों पर अपनी माँ को ढूंढने का निर्णय लिया था, क्योंकि 50 से 60 प्रॉपर्टीज अमन के शहर से बाहर ही थीं। जल्दी ही विक्रांत अमन की प्रॉपर्टीज की डिटेल निकालकर कई जगह गया, लेकिन कहीं खाली जमीन बन चुकी थी तो कहीं कुछ न कुछ काम चल रहा था, और कहीं कुछ घर बने हुए थे, लेकिन विक्रांत को कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसे लगा हो कि उसकी माँ वहां मौजूद है। क्योंकि विक्रांत को पूरा यकीन था कि जैसे ही वो उस जगह के आसपास जाएगा, उसे एहसास हो जाएगा कि उसकी माँ वहां मौजूद है या नहीं। कुछ ही देर में विक्रांत रंधावा 20 से ज्यादा प्रॉपर्टीज में जाकर चेक कर चुका था, लेकिन वहां उसे अपनी माँ का कोई नाम और निशान तक नहीं मिला था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोच लिया था कि वो आज इन 60 जगहों पर जाकर जरूर चेक करेगा। कम से कम उसकी माँ मिले ना मिले, लेकिन उसके मन की तो निकल जाएगी कि हाँ, उसने हर जगह जाकर चेक किया था। ये सोचता हुआ विक्रांत रंधावा हर एक जगह को पर्सनली देखने लगा, और फिर जल्दी ही वो एक खंडहर नुमा घर के सामने खड़ा हुआ। वो घर कोई और नहीं बल्कि वही घर था जहां उसकी माँ ने तारा और अमन को कैद करके उनका पिछला जन्म दिखाया था, क्योंकि वो अब अमन सिंह राठौर की नई प्रॉपर्टी थी। उस घटना के बाद अमन सिंह राठौर ने उस खंडहर नुमा जगह को भी खरीद लिया था, इसलिए वो भी अमन की प्रॉपर्टी में से एक बन चुकी थी। पहले तो विक्रांत ने सोचा कि वो यहाँ जाकर क्या करेगा, ये जगह तो बहुत ही उपेक्षित हो चुकी है। लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर इतनी सारी प्रॉपर्टीज होते हुए भी अमन सिंह राठौर ने ये नई प्रॉपर्टी क्यों खरीदी है, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या ऐसा नहीं है कि उसकी माँ को यहीं रखा हुआ है? विक्रांत के मन में कई सवाल आ गए थे, और फिर कुछ सोचकर
जैसे ही उसने खंडहर नुमा घर के बड़े से गेट को खोला और अपना पहला कदम रखा, तो एक जोर से आंधी चलने लगी, और जो उस खंडहर में जिन्न थे वे समझ चुके थे कि इस जगह पर कोई आया है। वे लोग अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे। वे समझ चुके थे कि शायद अब युद्ध का समय आ गया है, क्योंकि जिस भी शक्ति ने उस खंडहर में कदम रखा था वो कोई आम शक्ति नहीं थी। और विक्रांत रंधावा के कदम रखते ही उसकी माँ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो उन जिन्नातों की ओर देखते हुए बोली, मेरा बेटा आ गया है, अगर हिम्मत है तो उसका मुकाबला करके दिखाओ। जैसे ही उसकी माँ ने ये कहा, जिन्नातों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, और तभी एक दूसरा जिन्न बोला, हमें जिन्न महाराज और उनकी माँ ने इस औरत की रखवाली करने का हुक्म दिया है, हम अपनी जान देकर भी इस औरत को यहाँ पर कैद रखेंगे। प्यार कहते हैं, प्यार एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को बहुत कमजोर बना देती है, चाहे वो इंसान कितना ही क्रूर क्यों ना हो, लेकिन प्यार उसके अंदर भी जज्बा भर देता है, उसके अंदर किसी को पाने की, उसे अपना बनाने की चाह भर देता है। ठीक उसी तरह से हमारी कहानी है एक ऐसे इंसान की जो इतना बेरहम है कि किसी भी इंसान को सामान्य मौत तो देता ही नहीं है, वो उसकी इतनी दर्दनाक मौत देता है कि मौत भी कांप जाए। उस बेरहम इंसान का नाम है राणा, जिसकी दुश्मनी सिर्फ पुलिस वालों के साथ थी। उसकी जिंदगी का केवल एक ही लक्ष्य है, पुलिस वालों की जान लेना। किसी भी पुलिस वाले को जिंदा नहीं छोड़ना। बचपन से ही उसके दिलो दिमाग में पुलिस के खिलाफ एक सख्त नफरत भर गई थी। एक हादसे की वजह से, क्या वजह थी जिससे सीधा साधा भोला भाला रणवीर बन चुका था राणा, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसका नाम सुनकर सभी पुलिस वाले थर थर कांपते थे। वो पुलिस वालों पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया करता था। उसकी जिंदगी का केवल एक ही मकसद था, पूरे शहर से, पूरे देश से पुलिस का नाम और निशान तक मिटा देना। लेकिन राणा की बढ़ती हुई रफ्तार को लगाम तब लगी जब उसकी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत, केवल 21 साल की लड़की आई थी। वो लड़की जिससे राणा बचपन में मिला था, लेकिन उसे इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि बचपन में जिस लड़की से वो मोहब्बत करने लगा था, वो आज उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन वो लड़की एक तरह की रहस्यमय लड़की थी। उसके न जाने कितने ही रूप थे। क्या होगा जब राणा की मुलाकात होगी उस रहस्यमय लड़की से, और क्या पहली मुलाकात में ही राणा अपना दिल हार जाएगा उस पर? जानने के लिए पढ़िए ये बहुत ही दमदार और खूबसूरत कहानी, क्रूर हृदय।